ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानं जना सलाकया चच्छु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जया मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद्भागवत से पठन स्कंद 4 अध्याय 19 श्लोक संख्या 32। प्रथु कीर्तये प्रथोर्भूयात् प्रथु कीर्तये प्रथोर्भूयात् तरहि को न सतः क्रतुः तरहि को न सता क्रतुः अलं ते क्रतुविस्वष्टैर् अलं ते क्रतुभिः स्रस्विष्टये यद् भवान् मोक्ष धर्मवेत् यत् भवान् मोक्ष धर्मवे। प्रथु कीर्तये प्रथोर्भूयात् तरहि को न सता क्रतुः अलं ते क्रतुभिः स्विष्टये यद् भवान् मोक्ष धर्मवे। प्रथु कीर्तये प्रथोर्भूयात् तरहि को न सतः क्रतु अलं ते क्रतुभिः स्विष्टये यद् भवान् मोक्ष धर्मवे। आप लोग दोहराएंगे। प्रथु कीर्तये प्रथोर्भूयात् तरहि को न सतः क्रतु अलं ते क्रतुविस्रिष्टये यद् भवान् मोक्ष धर्मवे। शब्दात् प्रथु कीर्तये व्यापक कीर्ति वाले प्रथो राजा प्रथु का भूयात हो तरही अतः 59 क्रतु 99 यज्ञ वाला अलम कोई लाभ नहीं बस ते तुम्हारे क्रतुविही यज्ञ करने से सुइष्टय सुसंपन्न यत क्योंकि भवान आप मोक्ष धर्मवीत मोक्ष के मार्ग को जानने वाले अनुवाद और तात्पर्य अवेचनार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद इस प्रकार है। श्रील प्रभुपाद की ब्रह्मा जी ने अंत में कहा बस महाराज प्रथु के 99 यज्ञ ही रहने दो। किन से कहा? ब्राह्मणों से कहा। बस महाराज प्रथु के 99 यज्ञ ही रहने दो। फिर वे महाराज प्रथु की ओर मुड़े। कौन मुड़े? ब्रह्मा जी मुड़े। और उनसे कहा आप मोक्ष मार्ग से भली भांति परिचित हैं, अतः आपको और अधिक यज्ञ करने से क्या मिलेगा? तात्पर्य ब्रह्मा जी राजा प्रथु को निरंतर 100 यज्ञ संपन्न करने से रोकने आए थे। केवल इसीलिए ब्रह्मा जी इधर आए। हाँ, राजा प्रथु 100 यज्ञ करने के लिए कृत संकल्प थे और इंद्र ने इसे गंभीरता से लिया क्योंकि वह सतक्रतु नाम से विख्यात था। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में सभी जीवात्माओं का स्वभाव है कि वे अपने प्रतियोगियों से ईर्ष्या करते हैं, उसी प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र राजा प्रथु के प्रति ईर्ष्यालु था। हो सकता है कोई दूसरा बिजनेस कर रहा हो तो इंद्र शायद उनसे ईर्ष्या नहीं करते, लेकिन यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में तो उनका नाम है सतक्रतु। ये दूसरा सतक्रतु कहां से बनने चला? वो भी जो है इंद्र के राज्य में। तो इसलिए इंद्र ने उसे रोकने का प्रयास किया। तो राजा इंद्र राजा प्रथु के प्रति ईर्ष्यालु था, अतः वह उनके 100 यज्ञों को संपन्न नहीं होने देना चाहता था। वस्तुतः इस प्रकार से काफी स्पर्धा थी और राजा प्रथु को रोकने के लिए तथा अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए इंद्र नाना प्रकार की अधार्मिक पद्धतियां चलाने लगा। जैसे अंग्रेज लोग चाय छोड़ करके चले गए, एक नहीं भारत में, तो ऐसे ही इंद्र ने उनके राज्य में अलग अलग प्रकार के आडंबर स्थापित कर दिए साधु समाज में, जिसका अभी तक प्रचलन चला रहा है। इन अधार्मिक कार्यों से व्रत करने के लिए ब्रह्मा जी यज्ञ स्थल पर स्वयं उपस्थित हुए। जहां तक महाराज प्रथु का प्रश्न था, वे तो भगवान के परम भक्त थे, अतः उनके लिए निर्दिष्ट वैदिक अनुष्ठानों को करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे अनुष्ठान कर्म कहलाते हैं और दिव्य स्थिति को प्राप्त भक्त के लिए इन्हें करने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती। फिर भी आदर्श राजा होने के नाते यज्ञ करना प्रथु का कर्तव्य था, अतः समझौता तैयार किया गया। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से राजा प्रथु इंद्र से भी अधिक विख्यात होंगे। ये क्या नाम है, प्रस्ताव पारित हुआ, दोनों समझौता हुआ प्रथु महाराज के और ब्रह्मा जी के बीच में। ठीक है, तुम यज्ञ बंद करोगे, तुम्हें अपनी कीर्ति चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने लिख करके दे दिया, सेंशन कर दिया कि तुम्हारी कीर्ति इंद्र से भी अधिक होगी, और तो तुम्हें कुछ चाहिए नहीं। हालांकि भक्त तो कीर्ति भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी तुम ये तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति का डंका बजेगा। इस प्रकार राजा प्रथु का 100 यज्ञ करने का संकल्प अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा के आशीर्वाद से पूरा हो गया। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जना सलाकया चक्षु उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पद कमलं श्री गुरुन वैष्णवांच श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो अस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रश भानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं श्रीगुरुदीनतारणं। यं प्रवजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मतया तर्वो अविनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमवानतयस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमवानतयस्मि भूतैर्महद्वी इमां पुरा विभो निर्मायसे ते यदमूसपुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशषोडशात्मकम् सोऽलङ्कृतशिष्ट भगवान् वचांसि मे सोऽलङ्कृतशिष्ट भगवान् वचांसि मे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्णा। तो आज श्लोक 32 पे तो चर्चा करेंगे, इसके साथ साथ में 29, 30, 31 भी बीच में है, तो उनको भी हम पढ़ देते हैं आप लोगों की जानकारी के लिए, और फिर जैसा भी होगा देखते हैं। इत्या मंत्र क्रतोरपति विदुरास्य विजोरुसा शुनुग्धस्ता जुयतो अभ्येत्य स्वयंभू प्रत्यसेधत। हे विदुर जी, राजा को यह सलाह दे चुकने पर यज्ञ करने में जुटे हुए पुरोहितों ने क्रोध में आकर स्वर्ग के राजा इंद्र का आह्वान किया। वे अग्नि में आहुति डालने ही वाले थे कि वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने यज्ञ आरंभ करने से रोक दिया। ना बद्यो भगवान इंद्रो यदज्ञो भगवंतनु यम जिंघा सथ यज्ञेन यस्येष्ठा तनवः सुरा। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार संबोधित किया, हे याजको, आप स्वर्ग के राजा इंद्र को नहीं मार सकते, यह कार्य आपका नहीं है, किसी को मानना या गिराना यह आपका नहीं काम। आपको जान लेना चाहिए कि इंद्र भगवान के ही समान हैं, वस्तुतः वे भगवान के सबसे अधिक शक्तिशाली सहायक हैं। आप इस यज्ञ द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, किंतु आपको यह ज्ञात तो होना चाहिए कि समस्त देवता स्वर्ग के राजा इंद्र के ही अंश हैं। इन सभी को तुम प्रसन्न करना चाहते हो और इंद्र को मानना चाहते हो, तो ये जानकारी रखना चाहिए कि जितने भी देवता हैं सब इंद्र के अंश हैं। तो फिर आप इस महान यज्ञ में उनका वध कैसे कर सकते हो? तदिदं पश्यतः महत् तदिदं पश्यतः महत् धर्म महत् धर्म व्यतिकरं द्विजा इन्द्रेण निश्चितं राज्ञः करमै तद्विजिंघा सता। राजा प्रथु के महान यज्ञ में विघ्न डालने तथा आपत्ति उठाने के उद्देश्य से राजा इंद्र ने ऐसे साधन अपनाए हैं जो भविष्य में धार्मिक जीवन के सुपथ को नष्ट कर सकते हैं। मैं इस घोर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं, यदि आप और अधिक विरोध करेंगे तो वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अनेक अधार्मिक पद्धतियों को फैलाएगा। तो आप सभी जानते हैं ये जो प्रसंग चल रहा है महाराजा प्रथु के 100 अश्वमेघ यज्ञ, संकल्प लिया था उन्होंने 100 यज्ञ का, और 99 यज्ञ संपन्न कर चुके हैं। 100वां यज्ञ का दीक्षा ग्रहण करके यज्ञ स्थल में बैठे हैं। तो जैसे ही इस बात की चर्चा
या इस यज्ञ की चर्चा जब स्वर्ग के राजा इंद्र को निन्यान में यज्ञ तो उसने ठीक ठाक चलो कोई बात नहीं है उसने सहन किया, लेकिन जब सोमा यज्ञ उन्होंने संकल्प लिया या दीक्षा ग्रहण की तो फिर इंद्र से ये सब सहन नहीं हुआ और तुरंत उन्होंने क्या किया उसका प्रतिशोध किया। एक सिद्धांत है, हालांकि इंद्र भगवान के अंश हैं, इन क्या नाम है देवानाम वासवो अस्मि भगवान बोलते हैं, समस्त देवताओं में मैं इंद्र हूं, इंद्र जो है देवताओं के अधिपति हैं, राजा हैं, स्वर्ग के राजा हैं, भगवान के भक्त भी हैं, सकाम भक्त हैं, इधर प्रथु महाराज भी भगवान के अंश हैं लेकिन प्रथु महाराज निष्काम भक्त हैं। इसलिए सिद्धांत यह स्थापित होता है इस संसार के अंदर कोई कितना भी बड़ी से बड़ी पोजीशन क्यों ना प्राप्त कर ले, चाहे वह स्वर्ग का राजा इंद्र भी क्यों ना बन जाए, यदि वो भगवत भक्ति भक्त नहीं है, यदि वो निष्काम भक्ति नहीं करता है तो उसके अंदर जो बद्ध जीव के जो चार दुर्गुण हैं वो उपस्थित रहते ही हैं। ये बात समझ में आ रहा है। इंद्र जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी स्वर्ग का राजा जो वास्तव में ही धर्मोपदेशक है, ऐसा व्यक्ति भी बद्ध जीवों के जो चार दुर्गुण हैं उनसे वो भी अछूता नहीं है। तो इसलिए संसार में कोई कितने बड़े से बड़े महान क्यों ना हो, महानता उसकी पोजीशन से नहीं होती है, महानता पोजीशन से होती है लेकिन हम इतना भी नहीं है कि कोई बड़ी पोजीशन वाला व्यक्ति भी बहुत महान होगा, नहीं, महानता होती है उसकी भगवत भक्ति से। तो इसलिए चूंकि इंद्र सकाम भक्त है और इतनी बड़ी पोजीशन पर है, राजा है, लेकिन फिर भी उसने जो है प्रथु महाराज से, जो वो भी भगवान के अंश हैं, भगवत भक्त हैं, फिर भी उनसे वो द्वेष करने लगा। प्रथु महाराज ये समझ करके यज्ञ नहीं करने जा रहे हैं कि मैं इंद्र से बड़ा पोजीशन लूंगा, इंद्र के प्रति उनका कोई भी द्वेष भाव नहीं है, द्वेष भाव प्रारंभ हो रहा है इंद्र की तरफ से। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परंतप, सर्गे यान्ति परंतप, हे शत्रुहंता अर्जुन, ये जो इच्छा द्वेष है ये सृष्टि के अंदर, इस भौतिक जगत के अंदर शुरू से ही चला आ रहा है, इससे कोई अछूता है नहीं। सत्यता है, इच्छा का मतलब होता है राग, किसी वस्तु में आशा, किसी वस्तु को प्राप्त करने के प्रति लालसा, और द्वेष का मतलब होता है जलन। लेकिन जब ये शुद्ध भाव में रहती हैं, जीवात्मा जब शुद्ध अवस्था में रहता है तो यही इच्छा द्वेष उसके अंदर प्रेम और विरक्ति के रूप में रहती हैं। इच्छा या राग शुद्ध जीवात्मा के अंदर ये प्रेम के रूप में बास करती है और द्वेष ये जो है उस जीवात्मा के अंदर विरक्ति के रूप में बास करता है। लेकिन जैसे ही जीवात्मा अपना संबंध इन भौतिक जगत के तत्वों से, भौतिक जगत की वस्तुओं से जब जोड़ लेता है, द्वंद मोहेन अज्ञानता के कारण, मोह के कारण, तो फिर क्या करता है वही प्रेम और विरक्ति कलुषित होकर के और राग और द्वेष के रूप में प्रकट हो जाती है। इसलिए जीवात्मा को, विशेष करके मनुष्यों को, मनुष्य विवेकशील व्यक्ति है, पशु अविवेक है, उनके अंदर ज्यादा विवेक, किसी चीज को ग्रहण करना या उसका प्रतिकार करना ये पशुओं के अंदर नहीं होती है, लेकिन मनुष्य को विवेक के द्वारा किसी वस्तु को ग्रहण करना है, किस वस्तु को नहीं ग्रहण करना है, ये अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए। लेकिन इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहिन भारत, ये विवेक कब उसका काम नहीं करता है, जब इच्छा द्वेष उसके अंदर आ जाती है, किसी के प्रति राग और किसी के प्रति घृणा, जैसे ही उसके अंदर एक गंदगी घुसी, उसी समय उसका विवेक कलुषित हो जाता है, फिर इच्छा द्वेष के अनुसार ही वो निर्णय लेता है, फिर वो विवेक के अनुसार निर्णय नहीं लेता है। जिसको प्राप्त करना है उसको प्राप्त करना है, उससे लाभ हानि भविष्य में क्या होगा उसके प्रति वो दृष्टिपात नहीं करता। तो इंद्र जैसा व्यक्ति हालांकि प्रथु महाराज एक राजा, एक प्रमाणिक राजा, ये अयोग्य राजा, प्रथु महाराज प्रजापते हैं, उनका ये परम कर्तव्य बनता है कि प्रजा के कल्याण के लिए प्रजा का पालन पोषण करना, वो तो ठीक है, लेकिन इसके बाद में राजा का ये परम कर्तव्य बनता है कि प्रजा का कल्याण भी साथ साथ में होना चाहिए, भगवत धाम जानी चाहिए। यदि राजा अपनी प्रजा को भगवत धाम नहीं भेज सकता तो वास्तव में वो राजा राजा नहीं है, वो प्रजा का फिर हितैषी नहीं है, कितनी भी भौतिक सुविधाएं दे दो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो प्रथु महाराज चूंकि धार्मिक होने के कारण, भगवत भक्त होने के कारण, भगवान की पालनी शक्ति से सम्मिलित होने के कारण, भगवान के अंश स्वरूप होने के कारण, उनका यह परम कर्तव्य बनता था कि मैं अपनी प्रजा को दृष्टांत के रूप में यत यत आचरति श्रेष्ठ, कैसे इनको मैं अपने कार्यों के द्वारा दृष्टांत प्रस्तुत करूं जिससे भविष्य में प्रजा भी उन पथ पर चल करके उन कार्यों को करके और भगवत धाम को प्राप्त करे। तो इसलिए प्रथु महाराज जो यज्ञ कर रहे हैं वो तो वास्तव में ही सही यज्ञ कर रहे थे, बोलो हरे कृष्णा, उनके अंदर कोई द्वेष नहीं था, और उनके दिमाग में हो सकता है कि ये बात थी भी नहीं कि मैं प्रथु, क्या नाम है, सॉरी, इंद्र को जो है परास्त करके, या सौ सतक्रतु जो इंद्र है मेरा नाम भी सतक्रतु हो जाए, हो सकता उनके दिमाग में बात भी नहीं होगी। उनका लक्ष्य एक बात प्रजा था, प्रजा के सामने दृष्टांत प्रस्तुत करना चाह रहे थे जिससे प्रजा इस पथ पर चल करके और अंत में भगवत धाम जाए। लेकिन दुर्दैव मी दृश्मिहा, ये दुर्भाग्य है इस संसार का, अच्छा करो या बुरा करो, अच्छा करो बुरा करो, चलो तो बुरा मिले तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा करके भी कभी कभी बुरा मिलता है। तो इसलिए प्रथु महाराज सिद्धांत के रूप में, चूंकि वो राजा हैं, राजा का भरण पोषण करना, साथ साथ में उनको भगवत धाम भेजना, तो इसके लिए प्रथु महाराज कटबद्ध थे। लेकिन इंद्र जो है उनके उस यज्ञ में, उस यज्ञ से द्वेषित होकर के प्रथु महाराज के प्रति, और उन्होंने समाज का, इधर प्रथु महाराज हित करना चाहते हैं और उसने समाज में क्या किया, अधार्मिकता का आडंबर फैला दिया। जैसे आपने कहा था ना, जैसे चाय उस समय तो जो है ठीक लग रही थी, लेकिन वास्तव में वो चाय कोई अच्छी वस्तु थोड़ी है, वो भी एक नशा है। तो इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने जो है साधु की वेश में, चाय पिएंगे तो नींद नहीं आएगी, ठीक है नींद तो नहीं आएगी कोई बात नहीं है, लेकिन उससे और भी तो बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं उससे, बहुत सारे, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो वो जो है क्या नाम है इंद्र जो है क्या करने लगा, साधु के भेष में और इस प्रकार का जो है उठाईगिरी करने लगा, ठग विद्या करने लगा, और उसका परिणाम हालांकि युगों में अलग अलग प्रकार से होता है, कभी अधिक देखने के लिए मिलता है, कभी कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन वर्तमान समय में हम हैं, इस कलयुग में हमें हैं, तो अभी जो उसका असर जितना है वो 90.9% दिखाई दे रहा है साधु समाज के अंदर, है कि नहीं है। साधु समाज में वो जो है इंद्र की करतूत, जिसने उसने अपने को जो है साधु भेष में ठगा, चीटिंग किया, घोड़ा चोरी किया, क्योंकि साधु चुराएगा तो हो सकता है कि सामने वाला विश्वास नहीं करे। मैं कोई सुनना था, कोई कथा बोल रहा था, एक बार एक चोर था, चोरी करता था, झूठ बोलता था, और चोरी करेगा वो तो झूठ बोलेगा ही बोलेगा। एक दिन अपने गुरुजी के पास में गया, गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे को कोई ऐसी शिक्षा दो जिससे मेरा कल्याण हो। उन्होंने कहा तुम ऐसा करो झूठ बोलना छोड़ दो। बोला ठीक है। अब झूठ बोलना तो छोड़ दिया, लेकिन चोरी तो करना है उसको। उसने देखा कि राजा के दरबार में बहुत सुंदर सुंदर घोड़े आए हैं, कैसे चुराना चाहिए। वो गया सीधा सीधा गेट कीपर द्वारपाल थे, उन्होंने रोका भाई कहां जा रहे हो। बोला चोरी करने के लिए। उनको ऐसा लगा कहीं जो है कोई सज्जन व्यक्ति है हमने गलत पूछ लिया तो भाई जो चोर चोर होगा वो थोड़ी बोलेगा चोरी करने के लिए जा रहे, तो बेचारे वो कुछ नहीं बोले, जा करके घोड़े को खोल करके लेकर के आ गया और अपने उसमें बांध दिया अपने घर में। तो राजा के जो सैनिक खोजते खोजते घोड़ा कहां चला गया, और वो सबसे अच्छा घोड़ा था राजा के उन घोड़ों में, खोजते खोजते सब जो है कहां घोड़ा कौन लेके गया, तो देखा कि घोड़ा उधर ही बंधा हुआ है, उसके वहां बंधा हुआ है। पूछा है घोड़ा कहां से आया, बोला राजा के दरबार से चोरी करके आया। तो उनको भी ऐसे लगा के जो है लेकिन हुआ ये उसकी ईमानदारी से उसकी सत्यता से वो घोड़ा जो सफेद हो गया था, तो वो कुछ बोले नहीं, उसको छोड़ करके चले गए, उस घोड़े को छोड़ करके चले गए। तो कहने का आशय ये है ईमानदारी का भी काम, सामने से तो ईमानदारी है लेकिन अंदर ठग विद्या है। तो इंद्र ने जो है साधु का भेष तो ईमानदारी पर आधारित है, क्योंकि जो साधु होते हैं वास्तव में वो विरक्त होते हैं, उन्होंने उनको जो है समान से इन सारी चीजों से मतलब कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन उसके अंदर उसने जो है एक ठग विद्या प्रारंभ की, जिसका कारण आज जो है 99.9% लोग साधु लोग इस ठग विद्या में चले गए, सब अपना घर बनाने में, आगे बोर्ड तो देखेंगे विरक्त महात्मा, लेकिन अंदर जाकर के देखेंगे तो सब कुछ भरा पड़ा है उसमें, ये सारा चलता। तो इसलिए प्रथु महाराज एक तरफ समाज के लिए अच्छा दृष्टांत प्रस्तुत करने जा रहे हैं उनके परम कल्याण के लिए, लेकिन साथ साथ में द्वेष के कारण इंद्र जो है एक दूसरा उसमें जो है गंदगी फैलाता जा रहा। तो इसलिए इस प्रॉपर गंदगी को रोकने के लिए, इस चीटिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए केवल एक ही मार्ग है, वो है चैतन्य महाप्रभु ने जिस संकीर्तन आंदोलन को सारे विश्व में फैलाया है, यदि इसको हम अच्छी तरह से प्रचार प्रसार करते हैं तो ये चीटिंग, ये धोखाधड़ी, ये ठग विद्या, ये क्या होगी कालांतर में ये बंद हो सकती है। इसलिए सभी भक्तों का ये परम कर्तव्य बनता है कि सभी को भगवान के नाम के प्रचार प्रसार के लिए सबको आगे आकर के और जो है प्रचार प्रसार करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत यह है, चूंकि इंद्र सकाम भक्त है, महाराज प्रथु निष्काम भक्त है, बिल्कुल कोई कामना नहीं है उनके, तो जब कोई एक महान वैष्णव के प्रति अपराध करता है तुरंत उसकी बुद्धि क्या होती है, उसकी बुद्धि जो है परिवर्तनशील हो जाती है और जो उसका पतन का कारण बनती है, अपने पद से वो क्या हो जाता है, उसी समय महान वैष्णव के चरणों में अपराध करने पर उसका पतन निश्चित हो जाता है। तो इंद्र प्रथु महाराज के चरणों में अपराध कर रहे हैं, जैसे उनके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हुई, ईर्ष्या उत्पन्न होने से ही उनके बुद्धि पलटे और उसी समय उनको क्या हुआ, उसके साथ साथ में वहीं तक वो सीमित नहीं रहा, इसके साथ साथ में उसने जो है समाज में एक ठग विद्या फैलाना शुरू कर दिया। यानी इंद्र का ये काम नहीं है चीटिंग करना, इंद्र का काम तो जो है समाज को एक धर्म पथ के मार्ग पर ले जाना, ये इंद्र का काम है। इंद्र जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो सुर हैं, जो भक्त हैं, जो धर्म पथ पर चलने वाले हैं। लेकिन जैसे ही एक भगवत भक्तों के चरणों पर जरा सा भी हम गलत सोचते हैं, गलत विचारधारा लाते हैं, तुरंत उसका उस पोजीशन से तुरंत उसका पतन हो जाता। एक बार की बात थी, ये जो है तुलसीदास रामायण में ये प्रसंग आता है, क्या नाम है, प्रहलाद महाराज भगवान के अन्यतम भक्तों में से थे। भगवान नरसिंहदेव में उनकी अटूट निष्ठा थी, उनके भक्तों में प्रहलाद महाराज की अटूट निष्ठा थी। एक बार की बात थी, भगवान की वो पूजा में लगे हुए थे, उसी समय सनकादि ऋषि चतुष्कुमार प्रहलाद जी से भेंट करने के लिए उनके महल में पहुंचे। द्वारपालों से उन्होंने कहलवाया कि देखे जाकर के कहो, प्रहलाद जी को कहो, हम प्रहलाद, क्या नाम है, चतुष्कुमार प्रहलाद जी से मिलना चाहते हैं। द्वारपाल गए, ये समाचार दिया कुमारों का, लेकिन प्रहलाद महाराज भगवत आराधना में इतने तल्लीन थे और उन्होंने उन द्वारपालों से कहलवा दिया कि अभी उनके पास में समय नहीं है। केवल इतना ही संवाद उन्होंने कुमारों के लिए दिया, जिसका परिणाम इतना हुआ कि ओ प्रहलाद महाराज भगवत आराधना करते करते ये मन में सोचने लगे कि जिस विष्णु के द्वारा मेरे पिता का वध हुआ, मेरे पर पिता का हुआ, मेरे वंश का वध हुआ, जिनको जो है खोज खोज करके मारते रहते हैं, मैं उनकी ही आराधना कर रहा हूं, ये मेरे जीवन के लिए धिक्कार है, ये मेरे लिए धिक्कार है। और हुआ ये, उसी समय उन्होंने पूजा बंद की और अपनी सेना लेकर के सीधी जो है चढ़ाई कर दी वैकुंठ लोक पर। ये प्रसंग जो है उसमें भगवान ने सोचा, नरसिंह देव ने सोचा, अरे इस मेरे भक्त को हो क्या गया है, अभी तो ये ठीक ठाक था, अचानक इसको क्या हो गया। उन्होंने नारद जी का स्मरण किया, नारद जी देखो आपका शिष्य जो है, देखो क्या हो गया इसको, जिसको मैंने पाला पोसा, अपनी गोदी में बिठाया, इतना दुलार किया उसके साथ में, अब मेरे से ही युद्ध करने के लिए आ रहा है, आप बताइए क्या मैं इसके ऊपर बाण छोड़ सकता हूं, जिसको मैंने एक बार आशीर्वाद दिया है, अब मैं क्या उसके ऊपर जो है बाण छोड़ सकता हूं या उसके साथ मैं युद्ध कर सकता हूं, जाकर के समझाओ क्या बात है। नारद जी फटाफट गए और जाकर के प्रहलाद के सामने पहुंचे, गुरु जी को देखा, प्रहलाद ने प्रणाम किया। प्रणाम करके जो है नारद जी ने पूछा, प्रहलाद कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा, ऐसे ऐसे में विष्णु पर आक्रमण करने जा रहा हूं, जिन्होंने मेरे पूरे वंश को मार मार करके एक खोज खोज करके मारा है, मैं अभी जो है उनसे बदला लूंगा। नारद जी ने कहा, तुम ये बताओ तुमसे मिलने के लिए कौन आया था? दो चार दिन में कोई मिलने के लिए आया था क्या? बोला हाँ आए तो थे। कौन आए थे? बोला चार कुमार आए थे। बोला अच्छा, आपने क्या कहा? तो मैंने उनसे जो है मिलने के लिए बोल दिया कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बाद में मिलूंगा। नारद जी तुरंत समझ गए, बोला ये महान अपराध किया। तुरंत उन्होंने कहा, रुको बाद में चढ़ाई करना, पहले आप यहीं खड़े होकर के चतुष कुमारों के चरणों में क्षमा याचना करो कि मैंने जो अपराध किया है, मैंने जो गलती की है आप लोगों के चरणों में, उसे आप माफ करें। हृदय से प्रहलाद जी ने चतुष्सनों का जो है स्मरण किया, स्मरण करके क्षमा याचना की, और क्षमा याचना करके जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो उनकी जो बुद्धि जो कलुषित हो गई थी, विपरीत हो गई थी, एकदम ठीक ठाक हो गई। और उस समय फिर उनको होश आया, आहा मैं क्या करने वाला था, अपने को फिर धिक्कारे, धिक्कार के क्षमा याचना की और क्षमा याचना करके फिर वापस चले गए। तो ये बिल्कुल सत्य समझना है, वैष्णवों के प्रति जब भी कोई गलत विचार दिमाग में आता है तुरंत उसी समय हमारी बुद्धि कलुषित हो ही जाती है। इसलिए प्रयास करना चाहिए हमें इन सारी कलुषित वस्तुओं से बचने के लिए, वैष्णव अपराध से, विशेष करके वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। तीसरा सिद्धांत, भलों के साथ बुरा क्यों? ये कल भी मेरे दिमाग में बात थी है। ब्रह्मा जी ने आकर के प्रथु महाराज को तो डांटा, लेकिन इंद्र से एक शब्द नहीं कहा। इंद्र को फटकार मार सकते, भाई तुझे लेना देना क्या है उसमें, तेरा कोई स्वर्ग लेना चाहता है वो तो ऐसे दिमाग में उसके बात थी नहीं, ठीक ना? तो तुम भला उसके प्रति क्यों ईर्ष्या द्वेष कर रहे हो? लेकिन कहीं भी सुने होंगे इसमें, अभी तक प्रसंग में एक भी जगह ऐसा नहीं आया कि जहां ब्रह्मा जी ने या किसी दूसरे ने आकर के इंद्र को डांट मारा। किसको डांट फटकार पड़ी? केवल प्रथु महाराज को ही डांट फटकार पड़ी। तो कभी कभी हमें ये सोचना चाहिए, हमने तो भला अच्छा किया था लेकिन फिर भी हमें उसका सजा क्यों मिली, हमें हमसे उसने ऐसा क्यों बोला। आप सभी जानते हैं पांडव लोग कितने धर्मात्मा थे, जिसके लिए स्वयं जो है पिता में भीष्म बोलते हैं कि अहो कष्टम अहो न्यायम यत यूयम धर्म नंदना जीवतम नाहरत क्लिष्टम विप धर्म अच्युताश्रय। धर्म नंदना, जब भगवान पांडवों को लेकर के और इस उस स्थान पर गए जहां भीष्म पिता में बाणों की सर संया पर पड़े थे, तो उस समय उनको प्रसन्नता भी हुई क्योंकि उनको क्या नाम है राज दे दिया गया था, युधिष्ठिर महाराज का राज अभिषेक कर दिया गया था, लेकिन उनको बड़ा कष्ट हुआ ये सोच करके, यत यूयम धर्म नंदना तुम धर्म पुत्र हो, साक्षात ब्राह्मणों की सेवा करने वाले, धर्म पथ पर चलने वाले और अच्युताश्रय, भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है तुम्हारे रक्षक हैं, द्वारपाल हैं, क्या क्या बने हैं, फिर भी अहो कष्टम अहो न्यायम, आप लोगों के जीवन में इतना कष्ट, इतना अन्याय, ये तो वास्तव में आश्चर्य करने वाली बात है। बोलो हरे कृष्णा। तो हमें ये संतोष कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका आप जो है हल ढूंढने जाओगे तो और समस्याओं में ही फंसोगे, उसका हल ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। केवल भगवान का इस प्रकार का नियोजन समझ करके, भगवान का कुछ हित ही है हमारे प्रति, कुछ हित ही करना चाहते हैं, ऐसा सोच करके केवल उसको सहन करना ही होगा। हालांकि मन में कई सारे विचार आ सकते हैं कि नहीं मैं क्यों सहन करूंगा, मैंने थोड़ी कोई गलत किया है, वो गलत है, इसका मैं जो है यहां ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन सत्यता यह है पराजय ही मिलेगी और कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए भगवान के ऊपर आश्रित रह करके जैसे पांडवों ने समय का इंतजार किया, समय के अनुसार हर चीज बलवती होती है, कभी देवता लोग विजयी होते हैं तो कभी असुर लोग विजयी होते हैं, समय के अनुसार विजय प्राप्त होती है, लेकिन इमीडिएटली हम चाहें कि नहीं उसका रिजल्ट आना चाहिए तो ये हमारे लिए और समस्या भी होगी, इसलिए हमें शांति से रहना चाहिए, जिसके कई सारे शास्त्रों में उदाहरण दिए गए हैं। जैसे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, उन्होंने कोई गलत नहीं किया था, कोई किसी का अहित नहीं किया था, कोई गलत मैसेज भी नहीं दिया था, लेकिन फिर भी उनको सूली पर चढ़ना पड़ा। बुद्ध, भगवान बुद्ध, लोग वेदों का प्रमाण दे करके मांसाहार कर रहे हैं, हालांकि वेदों में जो मांस खाने के लिए जो थोड़ा अंश में निर्देश दिए गए हैं, वास्तव में उनको मांसाहार में फंसाने के लिए नहीं दिया गया, मांसाहार से विरक्ति के लिए दिया गया है। शास्त्र कभी भी गलत प्रचार नहीं करते हैं, शास्त्र को हम कैसे समझ पा रहे हैं ये विशेष बात है। तो शास्त्र तो कहते हैं कि मनुष्य को धीरे धीरे क्या करना चाहिए, इन गलत व्यसनों से ऊपर उठना चाहिए, लेकिन लोग उसका प्रमाण दे करके और उसमें गलत गलत कार्यों में फंसते जा रहे हैं। अंत में बुद्ध के रूप में भगवान प्रकट होकर के वेदों को ही बहिष्कृत करना पड़ा, वेदों को क्या करना पड़ा, उनको बहिष्कृत करके और अहिंसा परमो धर्म इसकी उनको स्थापना करनी पड़ी थी। अब समाज से क्या कहे, कोई कहा तो उससे जाए जिसकी जो है बुद्धि ठीक ठाक हो, उससे कहा जाए। तो इसलिए ये जो है तीसरा सिद्धांत है, और चलते चलते चौथा सिद्धांत ये है, भगवत भक्तों को भक्ति का ही प्रचार प्रसार करना चाहिए, उनको ज्यादा कर्म कांड के, ज्ञान कांड के या ध्यान कांड के दूसरे पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे क्या नाम है, ब्रह्मा जी उनको बता रहे हैं, ब्रह्मा जी जैसे उनको समझा रहे कि मोक्ष धर्म वित्त, आप तो जो है मोक्ष धर्म के वेत्ता हैं, आपको फिर भला इन सारे चीजों को कर्म जो है क्या नाम है वैदिक कर्मों को करने की फिर आपको फिर जरूरत कहां है। जैसे शास्त्र में क्या यश क्या नाम है, यथा तरोर मूल निश्चेच नेना तुष्यंति तस स्कंद भुजोपशाखा, जो भगवान जो क्या नाम वृक्ष की जड़ में पानी दे रहा है, इसका मतलब है को पूरे वृक्ष को दे रहा है, भुजोपशाखा उसकी शाखा प्रशाखा सब कुछ तुष्ट हो जाती है। कृष्णदास कविराज भी बोलते हैं कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है, जो भगवत भक्ति कर रहा है, कृष्ण भक्ति कर रहा है, इसका मतलब है कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठितम् अत्येति तत् सर्व इदम् विदित्वा, इन जिनसे वेदों के पढ़ने से जो फल मिलता है, यज्ञ करने से जो फल प्राप्ति हो रही है, तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति हो रही है, दान देने से जिस फल की प्राप्ति हो रही है, इन सारे फलों को क्या है आसानी से जो कृष्ण भक्ति कर रहा है, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है, ये सारे के सारे फलों को अपना आसानी से प्राप्त कर लेता है। जो भगवान के नाम का जप कर रहा है, भगवत कथा सुनना है, कितने क्या नाम है, शाम के समय कितने अच्छे जो है क्या नाम रमाकांत प्रभु के द्वारा कितना सुंदर उपदेश प्रहलाद महाराज के दिए गए, तो जो ये कर रहा है उनको अन्य अन्य दूसरे कृत्यों में फंसने की जरूरत ही कहां है उसको। इसलिए एक जो योग्य राजा है प्रथु महाराज को ब्रह्मा जी समझना चाहते हैं, भाई आप जो है भगवत भक्त हैं, सीधा भक्ति का ही प्रचार प्रसार करो, क्योंकि जो कृष्ण भक्ति करेगा तो निश्चित रूप है कि इन सारे का फल तो वो अनायास ही प्राप्त कर लेगा। तो इसलिए भगवत भक्तों को विशेष करके ये समझना चाहिए कि उनको ज्यादा किसी दूसरे ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी मार्ग लोगे भगवत भक्ति के अलावा अन्य जितने भी मार्ग हैं सब ईर्षा द्वेष से भरे पड़े हुए हैं, हर मार्ग के अंदर ईर्षा द्वेष भरा पड़ा हुआ। भगवत भक्ति एक ऐसा मार्ग है, आप 64 माला जप करोगे तो जो 16 माला जप करने वाला वो कभी आपसे गुस्सा नहीं करेगा और सम्मान नहीं देगा, रेस्पेक्ट देगा, भैया ये तो 16 हम तो 16 भी नहीं हो पा रहे हैं, ये तो 64 माला जप कर रहा है, आपसे प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन आप जो हैं आप कर्मकांड में जाएंगे, एक यद क्या नाम है, जैसे निमी महाराज के प्रसंग में आता है, वशिष्ठ जी, निमी महाराज ने वशिष्ठ को गुरु के रूप में चयन किया था यज्ञ कराने के लिए, लेकिन उसके पहले देवताओं ने उनको आमंत्रित कर दिया वशिष्ठ जी को, तो वशिष्ठ जी उन्होंने सोचा कि ये तो अपना गुरचेला है, इसकी तो मैं बाद में कर दूंगा, यज्ञ पहले जो है दक्षिणा वहां ज्यादा मिलेगी इंद्र के पास में, उनका यज्ञ करना चाहिए, और अपने शिष्य की कोई परवाह न करके उनका यज्ञ करने के लिए चला गया। इधर निमी महाराज भगवत भक्त थे, उन्होंने सोचा कि भाई ये तो जो मनुष्य शरीर है ये तो कब जो है इसका नाशवान है, कब इसका अंत हो जाएगा, मैं कब तक उनका इंतजार करूंगा, उन्होंने दूसरा गुरु बना करके यज्ञ करा दिया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि उनको वशिष्ठ जी ने तुरंत उनको जो है श्राप दे दिया कि तू शरीर का तेरा पात हो जाए, शरीर से विहीन हो जाए। बताइए, हर मार्ग में खींचा तानी टांग, एक दूसरे की एक टांग से लटका हुआ है, खींचने में लगे हो, मनुष्य में ही नहीं पशुओं में देख लो, पक्षियों में देख लो, बंदरों में देख लो, कुत्तों में देख लो, किसके अंदर नहीं, सांप संसार एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, केवल कृष्ण भक्ति का ही प्रचार प्रसार करना चाहिए, अन्य ज्यादा लफड़े में जाएंगे, सफलता तो हासिल होगी नहीं और समस्या में ही जूझते जाएंगे और समस्या पे समस्या आती जाएंगी। तो इसलिए ब्रह्मा जी प्रथु महाराज को साथ साथ में उपदेश भी कर रहे हैं कि देखो आपके लिए ये सब कृत्य ठीक नहीं है, आप तो वैष्णव हैं, विष्णु भक्त हैं, और विष्णु भक्तों को तो केवल कृष्ण भक्ति का ही, कृष्ण भावनामृत का ही प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है समझा करके ब्रह्मा जी वहां से चले जाते हैं, आगे हम सुनेंगे, आगे क्या होता है उसकी चर्चा हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? हरे हरे, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महाप्राण के जगत गुरु शिल प्रभुपाद के निताई गौर प्रेमनंदे।